में मेरे स्वामी मुझको भी सिद्धि प्रदाता हो। वही राजग्रही नगरी धन्य त्रैलोक्य गुरु जाते जन में है धन्य सुमित्र पिता माता सोमा भी धन्य हुई जग में। हे देव तुम्हारी भक्ति का फल एक यही बस मिल जावे। प्रतिदिन प्रतिपल अंतिम क्षण तक तव नाम मंत्र जीवा गावे। नहीं पीड़ा हो नहीं हो कसाय बस कंठ अकुंठित बना रहे। हे नाथ तुम्हारे चरणों की भक्ति में ही मन रमा रही। बड़े भावों के साथ पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां भगवान मुनि सुवृत नाथ के चरणों में समर्पित हुई हैं और ये भावना भाई गई है इसमें कि हे भगवान, आप व्रतों के दाता मुनि सुवृत भगवान हैं। आपकी भक्ति का बस मुझे एक यही फल चाहिए कि हर पल हर दिन अंतिम क्षण तक आपका नाम मंत्र इस जिह्वा पर बना रहे और कोई पीड़ा ना होने पाए, किसी प्रकार की कषाय जागृत ना होने पाए, हमारा कंठ अकुंठित बना रहे और आपकी भक्ति मेरे मन के अंदर हमेशा समाई रहे। बहुत पहले ये स्तुति लिखी गई लेकिन आज तक ये शब्द मैं पूज्य माता जी के मुख से हमेशा सुनती हूं। जैसे ही कोई भी क्षण आता है, कभी अस्वस्थता का क्षण आता है, तो हमेशा वो यही कहती हैं कि भगवान, आपकी भक्ति मेरे मन में हमेशा बनी रहे, अंतिम क्षण तक आपका नाम किसी तरह से भी विस्मृत ना होने पाए, जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सताए, ये भी हमेशा उनको कहते ही सुना है। तो ये पंक्तियां आउटडेटेड नहीं है बल्कि अपडेट ही है पूज्य माता के जीवन में भी और हम सबके जीवन में भी सदा सदा के लिए ये अपडेट है। अर्थात हम इन पंक्तियों का सहारा लेकर अपने जीवन को तीर्थंकर भगवान के चरणों में सदैव सदैव बनाए रखें। 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुवृत नाथ का कथानक सुनाना मैंने आपको प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से हम प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग चारों अनुयोगों की बातें जानेंगे, क्योंकि एक महान तीर्थंकर के जीवन में केवल प्रथमानुयोग ही नहीं रहता, वे कर्म सिद्धांत का चिंतन करते हैं, कर्णानुयोग आता है, वे मुनि व्रतों को धारण करके मूल गुणों का पालन करते हैं, चरणानुयोग आता है, और वे जब श्रेणी पर आरोहण करके आत्म अवस्था शुद्धात्म अवस्था को प्राप्त करते हैं और भगवान बनते हैं, वही द्रव्यानुयोग उनके जीवन में सार्थक होता है। ऐसा प्रथमानुयोग का कथानक भगवान मुनि सुवृत नाथ का हम सबके लिए आदर्श है। आदर्श इसलिए है कि जब हम ऐसे कथानकों को सुनते हैं तो बरबस ही मन के अंदर एक भावना जागृत होती है कि भगवान, कब हम भी आपके जैसे बने और हमारा नाम भी आपकी श्रेणी में आए, हम भी सिद्धों की श्रेणी में पहुंच जाएं। भगवान मुनि सुवृत के तृतीय भव पूर्व से कथानक हमें मिलता है उत्तर पुराण ग्रंथ में। आचार्य श्री गुणभद्र सूरी ने उन भगवान के लिए कहा कि निवृत्तौ व्रत शब्दार्थो यस्या भूत सर्वभूत वस्तुषु देयान्नः सव्रतम् स्वस्य सुब्रतो मुनि सुब्रता। अर्थात जिनके नाम के व्रत शब्द का अर्थ सब पदार्थों का त्याग था। एक अणुव्रत होते हैं और एक होते महाव्रत। अणुव्रत में सब पदार्थों का थोड़ा सीमित त्याग किया जाता है और महाव्रत में पूर्ण परिग्रह का त्याग करके महाव्रतों का धारण किया जाता है। मुनि सूरत भगवान ने संपूर्ण पदार्थों का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया था और वे उत्तम व्रत के धारी थे। ऐसे श्री मुनि सूरत भगवान हम सबके लिए भी अपने जैसा व्रत प्रदान करें। इस भावना को लेकर हम चंपापुर नगरी की ओर चलते हैं, जहां मुनि सूरत नाथ से तृतीय भव पूर्व राजा हरिवर्मा राज्य करते थे। राज्य में हर तरह से मनोरंजन, राजकाज, धर्म कथाएं, प्रजा का पालन, सारी क्रियाएं सुबह से शाम तक चलती थी। और जब एक दिन राजा हरिवर्मा ने जाना कि हमारे चंपापुर के उद्यान में एक मुनिराज अनंत वीर्य निर्ग्रंथ महामुनिराज पधारे हैं, उनकी वंदना के लिए समस्त परिवार के साथ जाते हैं। मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा देकर पूजा करके वंदना करके और उनसे धर्म के स्वरूप को पूछते हैं, अर्थात मुनिराज की हितकारी वाणी सुनने के लिए लालायित होते हैं। राजा रानी और उनके साथ सभी प्रजा के लोग। तब मुनिराज ने बताया कि जीव संसारी और मुक्त के भेद से 2 प्रकार का है, और भी बहुत कुछ बताया। संसार में संसरण करने की अनादिकालीन कथा बताई कि हे राजन, अनादिकाल से ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है और अगर हम चाहें तो स्वयं इस संसार का अंत करके मोक्ष में पहुंच सकते हैं। उन्होंने कर्मों की लीला बताई कि किस प्रकार से कर्म के चक्कर में फंस करके ये जीव संसार में परिभ्रमण करता है। देखो, ये संसार का सुख मधुबिंदु के समान है। जैसे एक व्यक्ति एक वृक्ष पर चढ़ा और वहां पर बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, उसमें से एक मधु की बूंद, शहद की बूंद गिरती है, टपकती है, उसके मुंह में मीठी मीठी लगती है तो वो लालच में पड़ जाता है और डालियों को पकड़ करके उस मधुबिंदु के स्वाद में डूब जाता है। नीचे देखता है तो बड़े बड़े 4-4 सर्प नीचे मुंह बाहर खड़े हैं और भाला बर्छी सब नीचे है कि अगर मैंने पेड़ की डाली छोड़ी तो वहीं एकदम नीचे गिरूंगा, मैं मर जाऊंगा, या तो सांप खा जाएंगे या ये भाले बर्छी जो है मुझे काट काट करके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अर्थात चारों गतियों के दुखों से घबराता है और दिन और रात रूपी 2 डालियों को उसने पकड़ रखा है। एक विद्याधर उधर से निकलता है और वो उसकी बात को समझ जाता है कि ये नीचे जाने से डर रहा है, अभी सांप इसको काट लेंगे। कहता है विद्याधर, आ ये मनुष्य, आ मेरे विमान में बैठ, मैं तुझे चल अच्छी जगह दिखाऊंगा, वहां पर खूब सुखी सुख मिलेगा। जाना चाहता है व्यक्ति, लेकिन एक मधुबिंदु फिर से उसके मुंह में टपकती है। बस कहता, अच्छा कुछ रुको, जरा सी देर रुको, अभी चलता हूँ। बहुत देर तक वह विमान लेके खड़ा रहता है, लेकिन एक एक मधुबिंदु की लालच में वह विद्याधर के विमान को छोड़ देता है। आखिर एक दिन उसके हाथ से डाली छूट जाती है, यानी काल का चक्र आता है। दिन और रात रूपी काल के चक्र जो हैं, जिन्हें डालियों के रूप में कई मंदिरों में आपने देखा होगा, सफेद चूहा और काले चूहे की तरह दिन और रात काल चक्र में समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति काल के गाल में समाहित हो जाता है। ऐसे संसार चक्र का उपदेश सुनाते हैं मुनिराज और कहते हैं कि प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के बंध से कर्म 4 प्रकार से बनता है। मिथ्यात्व अविरति, कषाय और योग ये चार प्रकार से कर्म बंध के कारण है। हे राजन, मिथ्यात्व के कारण इस जीव ने संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण किया है सबको सुनाते हुए, और जब वे संसार की कथा को कहना शुरू करते हैं, राजा पूछते हैं, महाराज संसार कितने प्रकार का है? महाराज कहते हैं, संसार पांच प्रकार का है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव। ये पांच प्रकार का परिवर्तन करने के कारण संसार पांच प्रकार का है। 84 लाख योनियों के अंदर अनादिकाल से जीव पंच परिवर्तन कर रहा है, और पंच परिवर्तन करते करते ये जीव थकता नहीं, अर्थात वह बेचारा समझ नहीं पाता। इस प्रकार से मुनि के उपदेश को सुनकर राजा को वैराग्य हो जाता है। राजा को वैराग्य हो जाता है, वे अपनी रानी के साथ वापस अपने नगर में चंपापुर की राजधानी में जाते हैं, अपने राज्य में विचार विमर्श करते हैं, रानी के साथ कहते हैं कि हे रानी, अब मुझे इस संसार के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी मुझे वैराग्य हो गया, ये इंद्रिय सुख मुझे अच्छे नहीं लगते। उनके पुत्र, पुत्री, रानियां सब लोग रोकते हैं, अभी आप दीक्षा लेने नहीं जाएंगे, हम सब कैसे रहेंगे? वे अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, सबको यथा योग्य भेंट आदि देते हैं, और पुत्रों को राज्य व्यवस्था समझाते हैं ये सब कर करके, और वे किसी भी तरह से संसार में रहने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यानी जब असली वैराग्य आ जाता है तो व्यक्ति को कोई भी रोक नहीं सकता। असली वैराग्य पुनः संसार की ओर देखता ही नहीं, वो गुरु के पास जाकर अपना सब कुछ त्याग करने लगते, अपना मुकुट उतार दिया, अपने गहने उतार दिए, अपने वस्त्र उतारने के लिए तैयार है राजा, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को राज तिलक कर दिया था, और अब अपने गुरुदेव महाराज अनंत वीर के पास में जाकर सब कुछ त्याग कर रहे हैं। महाराज मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दे दीजिए। महाराज ने भव्य समझ करके राजा हरिवर्मा को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर दी। अब उनके संघ का एक मेंबर अर्थात राजा हरिवर्मा मुनिराज के रूप में गुरुदेव के पास विराजमान हो जाते हैं। वे चिंतन करते हैं, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट हैं पर हैं परिजन लोय। जब ऐसे चिंतन किया जाता है 12 भावनाओं का, तभी जाकर के संसार शरीर भोगों से विरक्तता आती है, वैराग्य होता है, और तभी उसका त्याग किया जा सकता है। वे मुनिराज ध्यान में लीन हैं। महामुनि की अवस्था में महाराजा हरिवर्मा, यानी कि कहा तो राज्य का सुख वैभव, क्षणिक सुख में निमग्न महाराजा हरिवर्मा, और कहा अनंत वीर मुनिराज के संबोधन से उन्हें संसार से वैराग्य होता है, और वे मुनि की अवस्था में आ जाते हैं। तत्व का उपदेश इतना सार गर्भित हो जाता है। तत्व का मतलब ही क्या होता है महानुभाव? तत्व माने सार, तत्व माने आत्मा का सार। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है कि रंगी को नारंगी कहते, कहें तत्व को खोया, और चलती को गाड़ी कहते हैं देख कबीरा रोया। रंगी है जो ऑरेंज कलर, उसको नारंगी कहते हैं, और जो दूध को घोट घोट करके उसका सार निकाल करके तत्व बना लिया जाता है उसको कहते हैं खोया। खोया क्या होता है? जो दूध का सार है उसको खोया कहते हैं, और जो चल रही होती है उसको गाड़ी कह देते हैं। गाड़ी का मतलब है तो गड़ जाए, एक जगह रुक जाए। ऐसा देखकर कबीरदास जी रोने लग गए। तो अगर हमारे दिगंबर महामुनिराजों को, जिन्हें वास्तव में संसार से वैराग्य होता था, कथनी को करनी में परिवर्तन करते थे, ऐसे महामुनिराज को अगर वे देख लेते तो कबीरदास जी को कभी भी रोना नहीं पड़ता। अर्थात हमारे संतों में क्या है, जो जिह्वा में है वो जीवन में है। उनकी दो प्रकार की बातें नहीं होती हैं कि जिह्वा में कुछ है, जीवन में कुछ है। ऐसे जिंदगी को जीने वाले ऐसे महाराज हरि वर्मा के रूप में भगवान मनीषवृतनाथ के तृतीय भवपुर के कथानक को सुन करके आप पुण्य का संपादन करते रहिए, यही सबके लिए मंगल प्रेरणा है। जलो मनीषवृतनाथ भगवान की जय।